السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، آمين. آج ہم سورة البقرة آیت نمبر 84 سے 91 تک کریں گے. دیکھتے ہم اس کی تفسیر. آپ نے اس سے پہلے دیکھا ہے بنی اسرائیل کی بات چل رہی ہے، اور اس کے اندر ان کی خرابیوں کو بتایا جا رہا ہے اور ان کے عقائد کے خلاف دلائل دیے جا رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں مخاصمہ. کیا کہتے ہیں؟ مخاصمہ، یعنی خصام، یعنی ڈیبیٹ جس کو کہیں گے، یا دلائل جس کو کہیں گے، کہ جو ان کے عقیدہ تھا جو انہوں نے بنا رکھا تھا اس کے خلاف عقائد. تو یہ ہمیں بتانے کا کیا مقصد ہے کہ ہم اس سے کیا کریں گے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل نے کیا اس کو ہمیں دکھایا جا رہا ہے، یہ دیکھو تم نے ایسا نہیں کرنا. اس لیے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب پچھلی قوموں نے اس طرح کے رویے رکھے اور ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، جیسے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے یا اور ان کے اوپر سزائیں آئیں، تو ان کے ان اعمال کی وجہ سے آئیں جو انہوں نے کیے. اب یہ آئینہ امت مسلمہ کو دکھایا جا رہا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل پہلے چنی ہوئی قوم تھی اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ منصب ان سے لے لیا ان کی بگاڑ کی وجہ سے، اور امت مسلمہ کو فضیلت دے دی جہانوں کے اوپر کہ اب امت مسلمہ ہے جو ان کی جگہ ریپلیس کرتی گئی. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ امت مسلمہ کو دکھایا جا رہا ہے، دیکھو تم نے ایسا نہیں کرنا. کیا وجہ ہے؟ جیسے ایک ماں بچوں کو کہے کہ بھائی بڑے بھائی کی طرح نہیں کرنا تم نے، دیکھو تمہارے بڑے بھائی نے کیا کیا اور دیکھو اس کیسے فیل ہوا. تو یہ سمجھ لیں بڑے بھائی ہیں، ان کے پاس پہلے شریعت آئی، نبی آئے، انہوں نے ان کے ساتھ کیا رویہ رکھا اور اپنی شریعت کے ساتھ اور دین کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اب تم نے ایسا نہیں کرنا، ان کے واقعات ہمارے لیے ایک عبرت ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کو قوموں کو جن کو چنتا ہے اللہ تعالیٰ، ان سے کیا چیز اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ کس میں پڑے. اور اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ انہی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں پھر جو یہاں پہ بتائی گئی ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ یہ گمراہیاں مسلمانوں میں آئیں گی، اکثریت اس کے اندر ہی مبتلا ہو جائیں گے. پھر اگین اتنی باتیں بتانے کے باوجود، کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی ان لوگوں کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے گزرے گے، ہاتھ کے ساتھ ہاتھ اور بالشت کے ساتھ بالشت، یعنی بالکل ان کے فٹ سٹیپس پہ چلو گے، یہاں تک کہ وہ گو کے بل میں بھی گھسیں گے تو تم بھی اس میں گھسو گے. اللہ اکبر. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کا اشارہ یہود و نصارہ کی طرف ہے؟ آپ نے فرمایا اور کون. دوسری حدیث میں ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بدبخت ایسا ہوگا جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو تمہارے میں سے بھی کوئی ایسا اٹھے گا جو یہی کام کرے گا. استغفر اللہ ربی. لیکن اللہ تعالیٰ نے وارن کیا اس سے کہ یہ کام نہیں کرنے. اور تو ایز امہ ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ کون سی چیزیں وہ کیا کرتے تھے. تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ قرآن کریم میں ان کے عقائد کے خلاف دلائل دیے گئے، اور چار قسم کے مخاصمے قرآن پاک میں آپ زیادہ تر دیکھیں گے. ایک مخاصمہ یہود کے ساتھ، ایک عیسائیوں کے ساتھ بھی آپ دیکھیں گے آگے چل کے، پھر مشرکین کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ. تو یہ مخاصمے، یعنی یہ ان کے عقائد کے خلاف دلائل یہاں پہ دیے گئے. ان کی خرابیوں کو ہائی لائٹ اس لیے نہیں کیا گیا کہ ہم پڑھ پڑھ کے سوچیں دیکھو کتنے برے تھے نا، انہوں نے ایسا کیا، یہ تو تھے ہی ایسے. اس لیے کہ تم اپنے آپ کو اس سے باز رکھنا ये वो चीजें हैं जिसने उनको डुबो दिया और वो लानत जदा हो गए और अल्लाह ताला की नाराजगी उनके ऊपर हुई, उसका गजब उनके ऊपर हुआ। ये ना हो कि तुम भी इसमें मुबतला हो जाओ। तो देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 74। वह इज अखदना, और जब लिया हमने मीसाक़कुम, मीसाक पुख्ता वादा तुमसे। ये किनको कहा जा रहा है? यहूदियों को, जो बनी इसराइल थे, कि अल्लाह ताला ने इनसे पक्का वादा लिया। पीछे भी आपने पढ़ा ना, वह इज अखदना मीसा का बनी इसराइल, तो अब यहीं यहाँ पे भी यही उन्हीं से वादे की बात आ रही है। पहले कौन से वादे थे? तौहीद के ऊपर कायम रहना है, वालदेन के साथ एहसान, रिश्तेदारों के साथ, यतामा मसाकीन के साथ एहसान, और देखो लोगों के साथ अच्छी तरह बात करना, नमाज कायम करना, जक़ात देना। लेकिन तुम में से बहुत ही कम थे जो इसके ऊपर कायम रहे। अब क्या है, आगे और भी इनसे वादा लिया गया था। क्या? नंबर वन, ला तस्फीकूना दिमाग करूं, तुम खून नहीं बहाओगे अपने। अपना खून बहाने का मतलब क्या है? इसके दो माने। एक माना तो ये कि खुद का खून ना बहाना, कत्ल ना करना खुद को, यानी खुदकुशी हराम है, इनमें भी हराम थी। नंबर टू, अपने भाइयों का कत्ल ना करना, क्योंकि अपनी साथ वाले दूसरे यहूदी का कत्ल भी ऐसे ही है जैसे तुम अपना कत्ल कर रहे हो। क्योंकि कोई भी उम्मत अगर उसके अंदर ऐसे हो जाए कि आपस में ही वो एक दूसरे का खून बहाना शुरू कर दे, तो फिर वो उम्मत कैसे कभी एक हो सकती है, और वो उम्मत कैसे कभी कोई दुनिया में काम कर सकती है जो एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े हो जाए। उन्होंने दुनिया में क्या रिफॉर्म्स लाने हैं, या क्या दुनिया में भलाई का काम करेंगे जो आपस में ही लड़ते रहेंगे क्या? वला तुखरिजू ना अनफुसकुम मिन दियारिकुम, और ना तुम निकालोगे अपनी जानों को अपने घरों से। यानी एक मतलब क्या, इसमें भी दो मतलब बनते हैं, यानी तुम अपने आप को घरों से ना निकाल देना। पहला अपने आप का ही ले, तो यानी इंसान बाज दफा अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के घरों से निकल के ये सोचता है कि मैं बड़ा नेकी का काम कर रहा हूँ, जंगलों में जाके आबाद हो गए, बस एक तरफ अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, और हम तो बड़े नेक हो गए। आपको याद होगी वो हदीस के तीन लोगों ने जो आके कहा था कि हम, मैं, एक ने कहा मैं तो कभी ऐसा नहीं कहूंगा रोजा छोड़ू, एक ने कहा मैं तो कभी रात को सोऊंगा नहीं, एक ने कहा मैं कभी शादी नहीं करूंगा। तो आपसे असलम ने फरमाया था ये मेरी सुन्नत नहीं है, मैंने इस्लाम के अंदर ये नहीं है कि कोई घरों से छोड़ के जंगलों में जाके आबाद हो जाए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं था, इसलिए उम्मत मुस्लिमा के लिए भी ये नहीं है। खुद को तकलीफ देना शरीयत ने हराम करार दिया है, ऐसी तकलीफों में खुद को डाल देना और सोचना कि ये दीन है, ठीक है? तो एक तो ये हो गया। दूसरा असल माना इसमें क्या है, अनफुसकुम के मतलब अपने भाई बंदों को, अपने यानी उम्मत के लोगों को अपने उनके घरों से ना निकालना, ये भी तुमसे वादा लिया गया था। तुम अकरार, तुम फिर तुमने इसका इकरार किया, वह अंतुम तशादून, और तुम गवाह हो, इस बात के गवाह हो कि तुमने इसका इकरार किया था अल्लाह ताला से, तुम्हें पता है इस चीज का, खुद इस पर गवाह हो कि हमने ये वादा किया हुआ है। ये जानते थे, कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। बाज दफा एक खामोश अहद भी होता है ना, चाहे साफ तौर पे ना भी इंसान करे, मगर एक खामोश इकरार भी समझा जाता है। मगर यहां पर तो कोई बात शुबे वाली थी नहीं, इसलिए कि ये इकरार बहुत क्लियर था। तुमने ये इकरार किया, तुम्हारे नबी ने आके तुम्हें बताया ये, और तुमसे ये इकरार लिया है। अब इनसे ना चार वादे लिए गए थे। एक वादा ये था कि एक दूसरे को कभी कत्ल नहीं करना, एक दूसरे का खून हराम है। नंबर टू, दूसरे को घर से नहीं निकालना। नंबर थ्री, एक दूसरे के खिलाफ किसी की मदद नहीं करनी। नंबर फोर, अगर अपना कोई भाई बंद कैद हो जाए तो उसको फिदिया दे के छुड़ाना है, कोई किसी ने उसको कैद कर लिया तो फिदिया दो। फिर इन्होंने क्या किया, इस ये देखिए अल्लाह ताला ने ये इकरार लिए इनसे, इन्होंने वादे किए, लेकिन वादा तोड़ना इनकी तबीयत के अंदर ही था।
तो आगे क्या आता है, सुम्मा अंतुम्हा उलाई, फिर तुम वो लोगो तकतलून अनफुसकुम, इसके बावजूद कि तुमने अल्लाह ताला से अहद किया था, तुम अपने नफ्सों को कत्ल करते हो, अपने भाई बंधों को कत्ल करते हो। असल में कत्ल कैसे होता था, यहूदी यहूदी को कैसे कत्ल कर रहा था, क्योंकि एक इनकी हिस्ट्री देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तशरीफ आवरी से पहले, मदीना आने से पहले, कबाइल एक दूसरे के साथ अलायंस करते थे, जैसे दुनिया में आज भी होता है, कई मुल्कों ने एक दूसरे के साथ अलायंस किया हुआ है, वो एक दूसरे की मदद करती हैं, एक के ऊपर हमला दूसरे के ऊपर हमला समझा जाता है, इस तरह से वो भी ऐसे करते थे कि अलायंस करते थे। तो औस और खजरज आपस के अंदर बहुत लड़ते थे, और उनकी लड़ाइयों के अंदर औस के जो अलायंस होते थे वो भी खजरज और उसके अलायंस के साथ लड़ते थे। औस के साथ कौन था, बनू कुरैजा, तीन कबाइल थे ना यहूद के मदीना में, बनू कुरैजा, बनू नज़ीर और बनू कैनका, ठीक है, कुरैजा जोए के साथ है और नज़ीर जो है वो दौद के साथ है, ठीक है। अब औस के साथ बनू कुरैजा था और खजरज के साथ बनू नज़ीर और बनू कैनका थे। अब जब औस और खजरज लड़ते थे, आपको पता है इनकी तो जंगें बहुत लंबी लंबी हुई, जब ये आपस में लड़ते थे तो फिर जाहिर है ये कबाइल भी लड़ते थे, यहूदी भी एक दूसरे के साथ लड़ते थे, जाहिर है जंग में तो सारे ही इकट्ठे होके लड़ते हैं ना, वो और ये सारे मिलके लड़ते थे, दूसरी तरफ यहूदी भी थे और बुत परस्त भी थे, तो यहूदी यहूदी के हाथ से भी कत्ल होता था और घरों से भी निकालते थे, दर बदर भी करते थे, जब जंग होती है तो ये भी होता था। तो तदाहरुन अलैहिम बिल इस्मि वल उदवान, तुम चढ़ाई करते हो ऊपर उनके साथ गुनाह के और ज्यादती के, गुनाह और ज्यादती में एक दूसरे के साथ ताबुन करते हो, यानी कत्ल कर रहे हो, घरों से निकाल रहे हो, ये तो तुम्हारे ऊपर गुनाह है, तुमने अल्लाह ताला के हुक्म को तोड़ा है, जबकि आप देखें कि पहले इनसे ही मीसाक लिया गया था कि नहीं आपने अपने को किसी को कत्ल नहीं करना, आपने किसी को घर से नहीं निकालना, लेकिन जब ये जंग होती है तो फिर तो ये नहीं देखा जाता, तो एक दूसरे के खिलाफ ये सारे काम होते थे। तो कितने आराम से तुम एक दूसरे के ऊपर जुल्म कर रहे हो, ज्यादतियां कर रहे हो, चढ़ाइयां करते हो एक दूसरे के ऊपर, अब बजाय इसके अपने भाई की मदद करो, तुम उल्टी उनके साथ, उनके आमने सामने आके उनके साथ लड़ाई शुरू करते हो। तो ये इन्होंने भी इस वक्त भी किया था और इससे पहले भी, जब मूसा अलैहि सलाम के बाद भी, जब ये 12 कबीले आपको पता है इनके थे, तो ये भी आपस में लड़ते थे और फिर एक दूसरे को मारते भी थे और इनके अंदर भी एका नहीं था। वह इन यातु को मुसारा, और अगर वो हो जाएं तुम्हारे पास कैदी, तो फादू हूं, तुम फिदिया लेते हो उनसे, यानी फिर अब मैंने आपको क्या बताया, चार बातें थी ना, चार में से तीन तो छोड़ दी और एक वो जो फिदिया लेने वाली बात है वो देने के खड़े हो गए, और अपने यानी कैदी छुड़ाए, दूसरे के पास कैदी हैं, चाहे वो काफरों के पास, मुशरिकों के पास थे, चाहे दूसरों के पास हो, अपने कैदी छुड़ा रहे हैं, फिर कोई उनसे पूछता कि जो है ना, फिर बताओ कि तुम ये कैदी क्यों छुड़ा रहे हो, तो कहते थे हमारी तौरात में ही लिखा है, तो तौरात में तो ये भी है कि तुमने कत्ल नहीं करना। अब इसको आज की दुनिया के सिनेरियो में देखें तो मुसलमानों के ऊपर, मुसलमान मुल्कों से ही लोग यानी उधर से ही रास्ता पाते हैं हमला करने के लिए, वो अपनी ही सी पोर्ट्स भी देते हैं, वो वहीं से काफरों के ट्रक भी जाते हैं, वहीं से सब कुछ जाता है और उनकी सप्लाई नहीं बंद करते, और वैसे दुनिया में शोर मचाते रहते हैं कि मुसलमानों के ऊपर कुछ ना किया जाए और मुसलमानों को ऐसे ना किया जाए और उनके ऊपर जुल्म ना किया जाए, और फिर उनकी इमदाद करनी हो तो उसके लिए भी ट्रक खड़े में, खुराक के ट्रक खड़े में ले जाने के लिए, और जी बड़ा डोनेशन दे रहे हैं क्योंकि वो वहां पे भूखे मर रहे हैं, लेकिन जब मारने का वक्त आता है तो फिर तुम दूसरों के साथ खड़े हो जाते हो, फिर तुम्हारी तरफ से सप्लाई भी जा रही है, फिर तुम जगह भी अपनी दे रहे हो, फिर अपनी एयर स्पेस भी दे रहे हो, फिर तुम हर चीज़ उनको मुहैया की हुई है, तो एक तरफ तुम उनके कत्ल के लिए उसके अंदर साथ हो, दूसरी तरफ तुम डोनेशन भी देते हो कि जो है ना वो भूखे मर रहे हैं, तो ये क्या चीज़ है। तुम्हें तो पहले ही कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो कहा है कि मुसलमान जो है वो मुसलमान का खून नहीं कर सकता, मोमिन मोमिन का भाई है, ना खून करता है, ना किसी के सुपुर्द उसको करता है, और ना ही उसको रुस्वा करता है, फिर भी
मुसलमानों को कहा गया कि जिस्म की तरह हो, जिस्म का एक हिस्से को तकलीफ होती तो सारा जिस्म तड़पता है। क्या होता है आज मुसलमान मुसलमान के लिए ऐसे ही है बिल्कुल। ये आईना ऐसा दिखाया गया, ये आयतें जब मैं आप लोगों के लिए तैयार कर रही थी तो मेरे दिल को इतनी तकलीफ हो रही थी कि आज हम बिल्कुल वही चीज कर रहे हैं जो यहूदी करते थे। कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। वाकई बालिश व बालिश जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई की है उसी तरह चल रहे हैं। इतनी तकलीफ दे हैं ये बातें क्योंकि साफ लिखा हुआ है हर चीज का, और फिर वो ही हम करने के लिए खड़े हो जाते हैं। और दुनिया में आज वही हमारी आज रवैये हैं, उसी किस्म के हमारे काम हैं। और सिर्फ मुल्कों की सतह को छोड़ दें, जब हम मुल्कों को पॉइंट आउट करते हैं ना तो उसके बाद फिर हम अपने आप को भूल जाते हैं। जो जिस सतह पे है वो यही कर रहा है, जिसका मुल्कों के ऊपर चलती है वो वहां पे कर रहा है, जिसकी अपनी जाति सतह पे है वो वहां पे कर रहा है। और फिर माली इमदाद देते हैं फिर उनको ही, उन्हीं मुसलमानों के लिए, उन्हीं का इलाज करने के लिए, उन्हीं को भूख से उसके लिए, लेकिन बाकी सारा कुछ कर रहे हैं जो दूसरे काफिर कहें उनके कहने के ऊपर सब कुछ कर रहे हैं। तो तुम क्या कर रहे हो जबकि वह हुआ मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम, हालांकि तुम्हारे पर तो हराम किया गया था पहले इनको निकालना ही, इनको तुमने घरों से दरबदर किया, यही तुम्हारे ऊपर मना था और तुमने वही किया। ये है अल्लाह ताला के दीन के साथ भी एक खेल करना, एक तरफ कुछ कर रहे हो एक तरफ कुछ कर रहे हो, यानी जिसका जो दिल चाहता है वो जितना उसको फिदिया देने के लिए, बड़ा नेकी का काम है। हम अपने भाइयों को छुड़ा रहे हैं, देखो तो पहले जो कत्ल कर रहे थे, पहले जो उनको तुमने घरों से निकाला, पहले जो उनके साथ तुमने जंग की, अब वो कैद तो होने थे। अफतुमिनुना भी बादल किताबी व तकफुरुना भी बाद, ये इस चीज को आप हाईलाइट कर लें कि ये एक जिसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ वो आ गया। अब तुम क्या बाज हिस्सा किताब का उसको फॉलो करते हो और बाज का इनकार कर देते हो? यानी आपको बताया ना मैंने कि चार बातें कही गई थी, उन चार में से क्या किया तुमने? तुमने तीन छोड़ दी और एक को पर अमल कर दी, यानी जो अपने आप को सही लगती थी, जो अपनी कन्वीनियंस की थी, जो अपने आपको सूट करती थी उसको तो ले लिया और बाकी सारी को छोड़ दिया, उसका इनकार कर दिया जैसे कि वो है ही नहीं। अब आप बताएं क्या ये दीन का मजाक करना नहीं है? अब इसकी सजा क्या है? फमा जजाउ मन यफअलु ज़ालिका, तो नहीं जजा होगी इसकी जो कोई भी ऐसा करेगा, मिनकुम तुम में से, इल्ला मगर एक ही चीज है उसकी सजा, खिज़्युन फिल हयात दुनिया। तुम शायद दुनिया के फायदे लेने के लिए कर रहे हो लेकिन उल्टा क्या मिलेगा? रुसवाई, जलील हो जाओगे दुनिया की जिंदगी में। वो यौम अल कियामती, और कियामत के दिन भी आराम नहीं है, युरदूना इला शद्दिल अज़ाब, वो लौटाए जाएंगे शदीद तरीन अज़ाब की तरफ। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, ये ना समझना अल्लाह को पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। तो क्या समझ आई इससे आपको, किस चीज की सजा? ये इतनी शदीद के दुनिया की भी रुसवाई, दुनिया में कहीं पे तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी और आखरत में तो शदीद तरीन अजाब, अशद्द अजाब, शदीद तरीन अजाब। अल्लाह अकबर। अब मुझे बताएं वजह क्या है, आप उस वजह को देखें वो क्या है। अफतुमीनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाद, ये है वजह। क्योंकि जब कोई ये करता है तो क्या होता है, असल में वो दीन के हिस्से बखरे कर रहा है, दीन को उसने उसको डायसेक्ट किया और फिर रख लिया, ये है चीजें जिस पे मैं अमल कर सकती हूं और ये चीजें हैं जो मेरी मर्जी की बातें नहीं है, इसको छोड़ो। यानी इस इस्लाम को टोटली नहीं लेते, हालांकि इस्लाम क्या है, एक पूरा पैकेज है। अब ऐसे नहीं आप कर सकते कि उस पैकेज में से आप देखें चूज करें कि मैंने ये करना है टिक मार्क और बाकी क्रॉस आउट कर दी, ये नहीं, ये नहीं मैं कर सकती। पिक एंड चूज नहीं है ये कोई बफे नहीं है जिसमें आपने अपनी मुताबिक की डिश डाल दी जो आपको पसंद है और बाकी छोड़ दिया।
हम हर एक ने अपने अपने कुछ बनाए हुए हैं। कुछ लोग समझते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करके ही बस फिर सत्ते खैरा है, फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी कर लो उसके बाद कुछ नहीं होगा, कोई मसला नहीं है, उनसे मोहब्बत है हमें और उसमें शेर के लिए नातों से झूम झूम जा रहे हैं और बस काफी है इतना। किसी ने सोचा बस वालदेन की खिदमत कर ली, देखो ये कितना बड़ा मैंने दीन का काम किया है। आपको नहीं पता हकूकुल इबाद सबसे बड़ी चीज है, अल्लाह ताला ने वो नहीं माफ करने हकूकुल इबाद, बाकी सब कुछ माफ कर देना है। लिहाजा मैं हकूकुल इबाद ही कर रही हूँ, बस वही करती जा रही हूँ। छोड़ो नमाज किधर और हिजाब किधर और हलाल कमाई किधर, छोड़ो उसको, वालदेन की जो हम खिदमत कर रहे हैं। किसी ने ये सोच लिया कि नमाज हम पढ़ रहे हैं उसके बाद सूद खाओ रिश्वत लो मिलावट करो जो मर्जी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सोचता है कि हम देगें चढ़ा देते हैं फलां जगह जाके, इतना इतना डोनेशन हमने मस्जिदों को दिया हुआ है, अब क्या फर्क पड़ता है, हम देखो कितने नेकी के काम करें। हर एक ने अपने लिए कोई ना कोई चीजें रखी हुई है जिनके ऊपर वो मुतमईन है कि मैंने बस इतना कर लिया ना, ये काफी है, दैट्स इट, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। ये है जो आज हम मजाक कर रहे हैं अल्लाह के दीन का। अब हम अपने गिरेबान में देखें, क्या मैं कुरान की तमाम बातों को मानती हूं अमल की बातों में लिखे, या कुछ को मानती हूं जो मुझे कन्वीनियंट लगती है और कुछ को नहीं मानती। उनको ये एक नेकी, देखिए अपने आप को भी तो तसल्ली देनी होती ना इंसान ने, अब उसने अपने आप को कुछ कुछ तो मुसलमान रखना होता है। अब उस जमाने के वो मुसलमान थे, आज के हम मुसलमान हैं, उसने अपने आप को कुछ कुछ मुसलमान रखना होता तो उसके लिए वो अपनी दिल की तसल्ली के लिए कुछ चीजें जरूर करता है, हर एक करता है, अल्लाह से बिल्कुल ही दीन से निकला हुआ हो तो वो अपनी तसल्ली के लिए जरूर ये कर लेते थे, फिदिया देख के देखो हमने कितनी बड़ी चीज की, अपने भाई बंदों को छुड़ा लिया हमने, उनकी खुराक का इंतजाम कर दिया हमने, इतना डोनेशन दे दिया हमने, देखो ऐसे कर दिया, तुम्हें तो पहली चीज ही मना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम की कड़ियां एक के बाद एक टूटती चली जाएंगी, जब एक कड़ी टूटेगी तो लोग अगली को पकड़ लेंगे, यानी ऊपर से नीचे तक कड़ियां है ना, ऊपर की टूटेगी नीचे आ जाएंगे, नीचे की टूटेगी नीचे आ जाएंगे, हत्ता के छोड़ते छोड़ते सब ही छूट जाना है, आखिरी जो कड़ी होगी जो सबसे पहली कड़ी टूटेगी ना वो ये है कि अल्लाह के कानून के अलावा कोई और कानून आ जाएगा उसको कायम करेंगे, और आखिरी कड़ी जो रह जाएगी ना वो है नमाज। और आज तो उस कड़ी में भी दरारें पड़ चुकी हैं, क्योंकि उम्मत कितनी कसरत है उम्मत की जो नमाज से ही गाफिल है, और जो पढ़ते हैं अक्सर आधी पढ़ी आधी छोड़ दी, चार पढ़ी एक छोड़ दी, तीन पढ़ी दो छोड़ दी, बस इस पे है। तो इस्लाम को एज अ होल एज अ पैकेज नहीं लेते, और ये जिल्लत और रुसवाई आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, दुनिया में हम इतने जलील हैं, कोई हम पे ट्रस्ट नहीं करना चाहता, हम आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, हम रुसवा हो चुके हैं, कोई हमारे पासपोर्ट्स देखता है बैन कर देता है कि ये इनको नहीं आने देना, क्योंकि रुसवाई अल्लाह ताला की तरफ से जिल्लत, आप देखते नहीं है जिल्लत कैसी छाई हुई, वाकई जिल्लत छाई हुई है और इसको महसूस हम कर रहे हैं, कोई हमारे पासपोर्ट को इज्जत नहीं देता, किसी मुल्क में जाए वो पूछता नहीं है, ऐसे ही मुल्कों में चले जाएं जो अपने इस्लामी मुल्क हैं उसमें भी नहीं कोई पूछता दूसरे मुल्कों में क्या होगा। और ये तो होगा जब तुम ये काम करोगे, जब जब ऐसा किया जाएगा कि दीन के हिस्से बखरे करके और अल्लाह के दीन का ऐसे मजाक उड़ा दिया जाए कि जो हमारा दिल करे हम इसके साथ खेल खेल लें, हमें पसंद आएगा जो हम वो करेंगे, हमें जो नहीं पसंद आएगा वो हम छोड़ेंगे, और उसके बाद भी दावा हम करते रहें कि हम तो बहुत नेक हैं, हमारे जैसा तो नेकी कोई नहीं। ये बहुत बड़ी खराबी है और इसका नतीजा आप देख लें फिर, ये है वो बीमारी जो हमारे अंदर आ गई है। अब ये क्यों आती है, इसके पीछे क्या चीज है, क्यों तो मीनूना भी बादिल किताब और तकफरूना भी बाद आता है, क्या आप क्या सोचते हैं इसकी क्या वजह होगी? अल्लाह ताला ने बता दिया अगली आयत में वजह, उलाइकल्लज़ीन अश्तरउल हयात दुनिया बिलआखिरा ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की जिंदगी खरीद ली आखिरत को बेच के। देखिए खरीदो फरोख्त में क्या होता है, कोई चीज आप देते हैं तो दूसरी लेते हैं। आपने पैसे दिए और किसी चीज को तरजीह दी थी तो आपने पैसे दिए ना, मसलन हमने पैसे दिए और मसलन दूध खरीदा तो आपने दूध को तरजीह दी, पैसे दे दिए दूध खरीद लिया। इन्होंने आखरत को दे दिया और दुनिया को खरीद लिया, क्योंकि इनके लिए दुनिया तरजीह थी, दुनिया प्रायोरिटी है। अब क्या है, ये है वो वजह जिसकी वजह से तुमीनूना भी बादिल किताब और तकफुरूना भी बाद होता है, कि जब इसको तरजीह दी तो अब जो चीज इसके फायदे की होगी उसको तो करेंगे, जो चीज इसके नुकसान की नजर आएगी उसको छोड़ देंगे। यानी इंसान को जो सूट करता होगा दुनियावी फायदे, दुनिया की मुताबिक जो उसके यानी उसके साथ मेल खाता होगा, जो उसको को सूटेबल लगेगा, जो इसके कुछ ही नुकसान में ना इस हम पड़े उतना हद तक करेंगे। है ना, कुराने पाक में ही है कि कुछ लोग हैं जो किनारे किनारे रह के अल्लाह की इबादत करते हैं, अब कुछ फायदा नजर आता है बस। पहले भी हमने मुनाफिकों की भी बात पढ़ी थी ना, चल पड़ते हैं जब रोशनी होती है और अंधेरा होता है तो फिर रुक जाते हैं। अभी तो यही करते हैं, तो इनूना भी बाद और तकफुरूना भी बाद। तो शरीयत में से भी हम सब ने कुछ ना कुछ चीजें फेवरेट निकाली नहीं है और कुछ को बिल्कुल क्रॉस आउट किया है, वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है कि हमने ये करना है कभी, क्योंकि हमारा दिल कह रहा है नहीं करना मैंने। क्यों? क्योंकि हम दुनिया को तरजीह दे बैठे। बाज लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने आखरत को मानते ही नहीं है, जो आखरत को मानते हैं उनमें भी ऐसे लोग हैं जो के कुछ कुछ ही हैं जो के वाकई आखरत को ऊपर रखते हैं, कि आखरत बननी चाहिए, दुनिया का नुकसान हो भी तो होता रहे। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो आखरत को मानते हैं लेकिन सिर्फ जुबानी जुबानी दावे करते हैं, उनके नजदीक फिर भी दुनिया ऊपर है आखरत नीचे है, दुनिया प्रायोरिटी है आखरत बाद की चीज है। हम ये नहीं कहते कि दुनिया की जिंदगी फालतू है, बेकार है, इसका कोई नहीं, इसको छोड़ दो, नहीं, लेकिन इसको प्रायोरिटी नहीं बना सकते, इसको मकसद नहीं बना सकते, इसको तरजीह नहीं दे सकते कि बस जो यहां पे फायदा है बस वो चीज है सब कुछ और बाकी कुछ नहीं। ये तो वेस्ट का फलसफा है ना, जहां पे आखरत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो आखरत को मानते ही नहीं है, तो वो फिर बस दुनिया के ही बंदे हैं। लेकिन जब मुसलमान भी ऐसे करने लगे कि दुनिया की जिंदगी नंबर वन पे है और आखरत नंबर टू पे है, मिली तो मिली, नहीं मिली तो देखी जाएगी, कोई बात नहीं, और दलील भी कुरान से ले आते हैं, देखो जी रब्बना आतिना फिर दुनिया पहले आता है, तो पहले तो हम दुनिया बनाएंगे उसके बाद देखेंगे आखरत बनती है कि नहीं, और इसी से सारी जिंदगी बदल जाती है इंसान की, कि वो प्रायोरिटी किसको देता है, जो खुद को आखरत के बंदे बनाते हैं वो फिर दुनिया के नफे नुकसान को बाद में रखते हैं, और जो दुनिया के बंदे बनते हैं वो फिर उनको ये नहीं है, जरूरी नहीं कि उनको भी दुनिया सारी मिल जाए। अगर मैं अपने गोल्स दुनिया के सारे बना लूं तो जरूरी तो नहीं है कि मुझे सब मिल जाए, वो भी तकदीर पे है, अल्लाह ताला ने जितना देना होगा बस उतना ही मिलेगा, वो भी सबको तो नहीं मिल जाता, सारे ही भाग रहे हैं आज, क्या सबको सब कुछ मिल गया? नहीं मिलता, तो यकीनी नहीं है कि दुनिया का सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आखरत जरूर तबाह हो जाएगी। दुनिया मिले नहीं मिले वो अल्लाह ताला के ऊपर है कि वो दुनिया किसको देता है, जितनी तकदीर में लिखी है। तो जितने लोग दुनिया के पीछे भाग रहे हैं आखरत तो उनकी तबाह हो ही गई, दुनिया की भी यकीन नहीं है, कंफर्म नहीं है कि उनको दुनिया भी मिल जाएगी, लेकिन हाँ जो आखरत के लिए दौड़ लगाता है उसको आखरत जरूर मिल जाएगी, और दुनिया भी हो सकता है मिल जाए, जो उसकी तकदीर में लिखी होगी वो जरूर मिल जाएगी। तो ये है फॉर्मूला, मगर इसके बावजूद जबकि हम इसके ऊपर ईमान रखते हैं, इसके बावजूद हमने आखरत को पीछे किया हुआ और दुनिया को ही कह रहे हैं आखरत बिगड़े तो बिगड़े वो बात की बातें हैं, दुनिया ना बिगड़े। व अम्मा मन तौगा व आसर अल हयात दुनिया फ इन्नल जहीम ही अल मावा। सूरह नाज़ियात में आपने पढ़ा कि जो सरकशी करता है और दुनिया की जिंदगी को प्रायोरिटी बनाता है ना, उसका ठिकाना जहीम है। इसे के देखें, उसने जब सारी चीजों का महवर, अपनी जिंदगी का गोल ये बना लिया, मेरा कारोबार अच्छा हो जाए, मेरी दुकान चल जाए, या मेरी जॉब है वो उसके अंदर मेरी तरक्की हो जाए, और इतनी प्रॉपर्टी बना लूं, खुशहाल जिंदगी हो, घर हो, गाड़ी हो, बच्चे अच्छे ओहदों पे हो जाए, बस ये मेरी जिंदगी और यही मेरा गोल है, बस ये करके मर जाऊं मैं कामयाब हूं। तो दीन के लिए जिंदगी लगाना तो कोई मकसद ही नहीं। दीन को सोचना उसके ऊपर, या उसकी कोई फिक्र करना, या उसके ऊपर चलना, या उसको कोई प्रायोरिटी देना, या उसकी सोच रखना, वो कहीं नहीं है। तो फिर रुसवाई होगी और क्या होगा, जबकि दुनिया तो अच्छी गुजरे या मुश्किल में गुजरे, उसने तो थोड़ी सी है गुजर ही जाना है, आखरत ने नहीं गुजरना, वो नहीं गुजरेगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्होंने अल्लाह अकबर आखरत बेच दी और दुनिया ले ली, फला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाब, इनसे अज़ाब हल्का नहीं किया जाएगा। और ये अज़ाब कहाँ होना है, दुनिया में भी हो सकता है और आखरत में तो है ही, ये अजाब में ही रहेंगे, आखरत में तो एक घड़ी भी अजाब नहीं कम होगा। अल्लाह अकबर, दुनिया में हाँ अजाब, कोई आग भी लग जाए तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खत्म हो जाती है, आखरत की नहीं खत्म होनी। कोयले भी जल जल के कभी ठंडे हो सकते हैं, लेकिन जहन्नुम की आग नहीं खत्म होगी। वला हुम युनसरून, और ना वो मदद दिए जाएंगे। हम सोचते हैं ना कि हम मुसलमान हैं, हमारी मदद क्यों नहीं होती, वो काफिर हैं, वो देखो कितने ऐसे डोमिनेंट हो रहे हैं, गालिब हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी क्यों नहीं अल्लाह ताला मदद करता। कैसे मदद हो, जबकि तुम्हें कहा उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, तुम सारे के सारे ईमान वालों, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो, तुम आधे दाखिल होते हो आधा बाहर बाहर रखते हो, पूरा नहीं हमने आना, पूरा कौन आया आखिर, दुनिया भी तो हमने, दुनिया में भी तो रहना है। तो मैंने आपको पहले बताया ना, किसने कहा है कि दुनिया में ना रहो, सारे ही दुनिया में ही रहते हैं, मगर किस चीज को प्रायोरिटी बना के रहना, थोड़ा थोड़ा आते हैं थोड़ा फिर बाहर, फिर थोड़ा आते हैं फिर बाहर, डरते हैं क्योंकि अल्लाह पे भरोसा नहीं है ना, डरते हैं कि अल्लाह ताला तुमसे ले लेगा कुछ। अल्लाह हु अकबर, किनारे किनारे पे रह के चलते हैं, इधर भी कुछ हो जाए क्योंकि अब क्या करें, दिल को भी तो तसल्ली देनी है कि हाँ आखरत पे ईमान है, इन लोगों का भी ईमान था आखरत के ऊपर, कहते नहीं थे कि हम जहन्नुम में रहेंगे मगर थोड़ा अरसा, तो इसका मतलब जहन्नुम पे भी ईमान था, तो आखरत होगी तो जहन्नुम भी है। अल्लाह अकबर, तो जो आधा पैर अंदर रखे और आधा बाहर रखे उसका क्या होगा, कहते ना जो आधा अंदर आधा बाहर, जो दो कश्तियों का सवार है वो डूबता ही है, तो कुछ फायदा नहीं है, ये जो मान भी लिया उसका भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो भी तुमने अपनी कन्वीनियंस का मानना है, जिसमें तुम्हारी वाहवा हो जाए, या जिसमें एक्सेप्टेबिलिटी मिले, या जो तुम्हें सूट करता हो, या जो तुम्हें दुनिया को कोई नुकसान ना पहुंचाता हो, या जिसमें कोई ताना ना सुनना पड़ता हो, ये नहीं है कि अल्लाह ताला को हुक्म क्या है, ये है कि जिसमें लोगों की कितनी अप्रूवल है, ये देख देख के तुम चलते हो। अब चाहे वो हमारे खानदानी रसूम और रिवाज हैं, उनको भी देख देख के हम कहते हैं कि भाई नहीं नहीं ये नहीं हम छोड़ सकते, क्यों, चाहे अल्लाह का हुक्म आ भी गया, नहीं क्या करें फिर खानदान नाराज हो जाए। अच्छा ये मैंने अगर हिजाब ले लिया तो फिर ऐसे हो जाएगा, लोग बातें बनाएंगे, मुझे ये कहेंगे, मुझे ये नहीं है कि अल्लाह ताला हुक्म क्या देता है, चाहे वो मेरा लिबास है, चाहे वो मेरे रस्मों रिवाज हैं, चाहे कोई बिदतें हैं छोड़ना जिनको है, चाहे काम कारोबार में कोई चीजें हैं, वो किसी चीज में भी ले लें, क्या हम यही नहीं करते, हमेशा ये देखते हैं कि इसकी अप्रूवल रेटिंग कितनी है, प्रोग्रामों की अप्रूवल रेटिंग नहीं होती, हमारे दीन में भी अप्रूवल रेटिंग्स हम देख के चलते हैं, जिसकी अप्रूवल रेटिंग जितनी ज्यादा होगी उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, फखर से बताते हैं हमने इतना काम किया इस मस्जिद के लिए, हम ही इसको खड़े करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है इसमें वाह वाह होगी, लेकिन बाकी कामों में जिसमें कोई वाह वाह ना हो उसमें कितना का हम सोचते हैं कि ये मैंने काम किया या ये मुझे करना है, तो हमारा सारा दीन अप्रूवल रेटिंग पे चलता है, और इससे मुतमईन है हम कि करते तो हैं ना आखिर,
अकबर, बच्चों को मैंने हाफिज बना दिया, मेरा बच्चा तरावी पढ़ाता है, मेरा बच्चा वहां पे जाता है, ये फखरिया बातें हैं, इन चीजों के अंदर है बस। और आगे क्या करना है, दीन और क्या तकाजे करता है, उसकी कोई परवाह नहीं है। अभी आप देखेंगे पिछली आयत ही क्या गुजरी है, पिछले सबक में क्या आयत आयत गुजरी है, क्या क्या अल्लाह ताला ने अहद उनसे लिए थे और हमारे लिए भी वो अहद लिए हुए। लेकिन ना कुलू लिन्नासी हुस्ना के ऊपर कोई तवज्जो है, ना वबिल वालिदैन एहसाना पे कोई तवज्जो है, ना यतीमों मिस्कीनों का कोई ख्याल ऐसा है, ना अकीमुस सला का कोई ख्याल है, ना आतुज़ ज़कात को कोई ख्याल है, ना अल्लाह ताला की इबादत सिर्फ करना, वो कितनी सारी उसके साथ रिक्वायरमेंट्स है, उसकी कोई चीज़ है।